ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हिमालय और पहाड़ी जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली पर्व, वहीं तराई मधेश में कल मनाया जाएगा होली पर्व। प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले एक सप्ताह से देश की हवाई उड़ानें प्रभावित। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सगरमाथा एवरेस्ट आरोहण की तैयारियां तेज और बलूचिस्तान ट्रेन हाईजेक खत्म हुआ ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। फागुन पूर्णिमा अर्थात होली का पर्व आज हिमाली और पहाड़ी जिलों में हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर रंग और लोला खेलकर मनाया जा रहा है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही आपसी मेल मिलाप और सद्भावना का संदेश लेकर आने वाले फागुन पर्व को आज परंपरागत रूप में विभिन्न रंग और लोला खेलकर मनाने की परंपरा है। फागुन पूर्णिमा पर विशेष रूप से भांग मिलाए गए खाद्य पदार्थ खाकर और विविध रंगों से रंगकर गाजे के साथ नाच गान करते हुए महिला और पुरुषों के समूह अपने क्षेत्र में सुबह से शाम तक घूमते हुए आनंद मनाते हैं। होली पर्व के अवसर पर आज काठमांडू के बसंतपुर में उपस्थित लोगों ने वातावरण को रंगीन बना दिया है और फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन गाड़े गए चीर को विधिपूर्वक उतारकर बाजे गाजे के साथ टूड़ी खेल में ले जाकर जलाया जाता है। तराई मधेश में कल होली का पर्व मनाया जाएगा। होली पर्व के उपलक्ष्य में सरकार ने हिमाली और पहाड़ी जिलों में आज सार्वजनिक छुट्टी दिया है, जबकि तराई मधेश में कल छुट्टी रहेगा। प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले एक सप्ताह से देश की हवाई उड़ानें प्रभावित हो रही है। तिरुवनंतराष्ट्रीय विमानस्थल ने बताया कि प्रतिकूल मौसम के कारण आवश्यक विजिबिलिटी न होने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही है। विमानस्थल के प्रवक्ता रिंजी सिरपा के अनुसार मौसम में आई खराबी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अधिक प्रभावित हो रही है। नेपाल में अभी भी मानसून प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं और वर्षा लाने वाली मौसमी प्रणाली का विकास हो रहा है, जिसके कारण मौसम प्रतिकूल होने पर कम विजिबिलिटी और हवा की गति अनुकूल होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विमान होल्ड और मिस अप्रोच की उपस्थिति उत्पन्न हो रही है। इस बीच एयर अरेबिया का विमान आज दोपहर काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर उतरने ही वाला था कि हवा की गति अनुकूल नहीं होने के कारण मिस अप्रोच ओवरशूट कर दिया गया। इस तरह आज ही नई दिल्ली से काठमांडू आए एयर इंडिया के विमान और बैंकॉक से आए थाई लाइन एयर के विमान को कुछ समय तक आकाश में होल्ड करने के बाद उतरने की अनुमति मिली। इससे पहले कल जापान के नारिता से आए नेपाल एयरलाइंस के विमान, कतर के दोहा से आए कतर एयरवेज और भारत के नई दिल्ली से आए एयर इंडिया, मलेशिया के कुआलालंपुर से आए वेंटिक एयर, दुबई से आए फ्लाई दुबई के विमान को कुछ समय होल्ड करने के बाद उतरने की अनुमति मिली थी। इसी तरह भैरहवा से आए फ्लाई दुबई, धनगढ़ी से आए बुद्ध एयर, पोखरा से आए यति एयरलाइंस के विमान कम दृश्यता के कारण होल्ड में रहे। नेपाल में बोली जाने वाली 125 भाषाओं के लिए एक समान लेखन पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से एक ही फॉन्ट लिपि बनाया गया है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा गठित नेपाल की भाषाओं की साझा लेखन पद्धति विकास अध्ययन कार्यदल और आवरण प्रकाशन के बीच हुए समझौते के अनुसार यह फॉन्ट बनाया गया है। प्रतिष्ठान के कुलपति भूपाल राय ने बताया कि विशेषज्ञ कार्यदल की सहायता से नए फॉन्ट बनाया गया है और यह प्रयास बेहद उपयोगी साबित होगा। भाषा आयोग के अध्यक्ष डॉ. गोपाल ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावित फॉन्ट से नेपाल में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के लेखन में एकरूपता आएगी। परराष्ट्र मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा आज भारत के झारखंड से नई दिल्ली पहुंची है। मंत्री डॉ. राणा का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनु महावर और भारत में नेपाली राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने स्वागत किया। मंत्री डॉ. राणा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में भाग लेकर संबोधन करेंगे। इसके अलावा मंत्री डॉ राणा भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य मित्र देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा है कि संघीयता सहित गणतंत्र के विकल्प में कोई अन्य शासन व्यवस्था संभव नहीं है। शंखुआ सभा के चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट में निर्मित वार्ड कार्यालय भवन का आज उद्घाटन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद के दो बड़े राजनीतिक दल के मिलकर वर्तमान सरकार बनाने के कारण इस सरकार को लापरवाही बरतने की छूट नहीं है। मंत्री खड़का ने जनता जल विद्युत कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर को परियोजना की क्षमता के अनुसार 2 लाख से 5 लाख रुपए तक बिना गारंटी के जल विद्युत शेयर के लिए सहूलियत दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज जनकपुर धाम स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय के भवन का शिलान्यास करते हुए उन्होंने बताया कि हालांकि उनका तत्कालिक ध्यान माध्यमिक शिक्षा परीक्षा को मर्यादित बनाने पर केंद्रित है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियान रुकेगा नहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिंह ने यातायात कार्यालय की गलत गतिविधियों को रोकने और सेवाग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। उचाइ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाली राष्ट्रीय गौरव की बेनी जोमसोम कोरेला सड़क परियोजना के अंतर्गत 9 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं कार्यान्वयन में आ चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन नियंत्रण, 4 पुल और 1 कालोपत्र परियोजना सहित चालू आर्थिक वर्ष के लिए चयनित 9 परियोजनाएं शामिल है। परियोजना के सूचना अधिकारी इंजीनियर विष्णु चापागाई ने बताया कि इन परियोजनाओं में से 4 का ठेका समझौता हो चुका है और वे कार्यान्वयन में है, जबकि 5 परियोजनाएं ठेका समझौता की प्रक्रिया में है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही माउंट एवरेस्ट सगरमाथा आरोहण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आरोहियों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आइसफॉल डॉक्टर की 10 सदस्यीय टीम बेस कैंप की ओर रवाना हो गई है, जैसा कि सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति एसपीसी ने बताया है। बसंत ऋतु हिमालय आरोहण के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, इसलिए अनुभवी आइसफॉल डॉक्टर टीम आवश्यक उपकरण और सामग्री के साथ नामचे से बेस कैंप की ओर बढ़ चुकी है, जैसा कि समिति के अध्यक्ष लामा काजी शेरपा ने बताया। बेस कैंप से ऊपरी हिस्से तक का मार्ग तैयार हो जाने के बाद ही व्यावसायिक आरोही टीमों को आरोहण की अनुमति दी जाएगी। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा के तीर्थयात्री आज जनकपुर धाम पहुंचे हैं। परिक्रमा के तीर्थयात्री भगवान श्रीराम और माता सीता की डोली के साथ भारत के फुलहर कल्याणेश्वर स्थान होते हुए आज जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर के गंगासागर के पूर्वी डीमा में स्थित डोलाघर में भगवान श्रीराम की डोली और रामानंद चौक में स्थित हनुमंत दरबार में माता सीता का डोली विश्राम करेगी। कल सुबह जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा के बाद तीर्थयात्री अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। परिक्रमा के समापन के बाद जनकपुर धाम में होली खेलने की परम्परा है। नेपाल और भारत की साझा धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार के रूप में मानी जाने वाली मिथिला मध्यमा परिक्रमा में नेपाल और भारत के लाखों तीर्थयात्री 14 दिन में नेपाल के 107 किलोमीटर और भारत के 26 किलोमीटर कुल 133 किलोमीटर की दूरी भजन कीर्तन के साथ खाली पैर तय करते हैं। कालीकोट की खाड़ा चक्र नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के चौकी में युवाओं के बीच झगड़ा होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीती रात हस्त बहादुर मल के घर के पूजा में आए युवाओं के बीच हुए झगड़ा में खुकरी चलाने से तिला गुफा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 छापरे के 17 वर्षीय राजेश शाही की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन हाईजैक होने के बाद सुरक्षा बलों का अभियान समाप्त हो गया है और इस अभियान में सभी चरमपंथी मारे गए हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक आईएसपीआर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में यह दावा किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रवक्ता ने बताया है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही चरमपंथियों ने 21 लोगों की हत्या कर दी थी। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अता तरार ने बताया है कि ट्रेन में कुल 440 यात्री सवार थे, जिनमें से कई को बंधक बना लिया गया था। इन्हें बचाने का अभियान 36 घंटों तक चला। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सावधान और कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे ऑपरेशन के दौरान किसी बंधक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमालय और पहाड़ी जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली पर्व, वहीं तराई मधेश में कल मनाया जाएगा होली पर्व। प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले एक सप्ताह से देश की हवाई उड़ानें प्रभावित। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सगरमाथा एवरेस्ट आरोहण की तैयारियां तेज और बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक खत्म हुआ ऑपरेशन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।